रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप अपनी होस्ट आंचल के साथ वेल बुक इज लाइक अ गार्डन कैरेज इन द पॉकेट एंड टुडे वी हैव मिसेस अंकिता शुक्ला विद अस इन द स्टूडियो हु इज अ फैशन डिजाइनर बाय प्रोफेशन एंड टुडे शी इज कैरिंग 5.1 बाय चेतन भगत इन हर पॉकेट वेलकम मैम टू अवर स्टूडियो
थैंक यू सो मच आंचल
ओके लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट 5.1 इज चेतन भगत डेब्यूट नॉवल एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग इंग्लिश नॉवल्स पब्लिश्ड इन इंडिया मैम फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग अबाउट द ऑथर चेतन भगत
राइट आंचल जैसे हमने last time interview kara tha and I cleared it out at very specifically that Chetan Bhagat is one of the most realistic writers agar aap inki koi novel padhte hain ya inka koi bhi write up padhte hain to you feel like he's talking about you in that particular situation
exactly.
ya aapko kabhi aisa lagta hai ki aap koi kitab padh hi nahi rahe hain he is just talking to you and he is just telling you ki aap is situation mein the ya main is situation mein tha to maine ye kiya ab aap socho aapne kya karna hai to he happens to be and as I've said very specifically a realistic writer क्योंकि realisticness बहुत जरूरी है life के अंदर एंड अगर मैं ये सही बोलूं अगर आप इस बात को सही जज भी करें कि जब तक आप अपने दोस्त से किसी चीज के बारे में कंसल्ट नहीं कर लेते डिस्कस नहीं कर लेते सिचुएशन को तब तक आप भी नहीं सोचते कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ यू ऑलवेज आर इन अ डिलेमा बट द सेम सिचुएशन इज इन हिज बुक एज वेल कि जो ये किताब है जो ये नॉवल है 5.1 इट्स ऑल अबाउट यू बीइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड आपने क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं
ओके लेकिन फिक्शन होने के बावजूद भी जो इसकी कहानी है वो काफी रियलिस्टिक होती है
राइट 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 क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि यू डोंट फील लाइक एक्चुअली नॉट रीडिंग अ नॉवल यू जस्ट थिंकिंग और जब
यू आर इन दैट सिचुएशन
यस या तो आप थे या कोई और आपकी आपका दोस्त ऐसे सिचुएशन में था आपने उसको ऐसे हेल्प किया तो ये वो सिनेरियो है इट्स बेसिकली रियलिस्टिक एंड बस इतना है कि इस ऑथर के बारे में अगर मैं ज्यादा बोलने लगी तो वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस द बुक बट यस ही हैपेंस टू बी अ वेरी रियलिस्टिक राइटर
ओके एंड टेल मी समथिंग अबाउट 5.1 नॉवल
ऑलराइट आंचल लेट मी क्लियर इट आउट वेरी स्पेसिफिकली टू यू कि आपको जिंदगी में क्या क्या गलतियां करनी चाहिए वो इस किताब के अंदर बिल्कुल लिखा है
क्या क्या गलतियां करनी चाहिए
एक्चुअली क्योंकि आप जिंदगी के अंदर जैसे एक सिनेरियो रहता है हर बार हर पेरेंट का ये थॉट है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने डॉक्टर बने और कंप्यूटर जीनियस बने कंप्यूटर जीनियस बने बिल गेट्स बन जाए माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवर कर ले हर माँ बाप के अंदर एक क्यूरियोसिटी लेवल रहती है एंड शायद यही क्यूरियोसिटी लेवल या यही प्रेशर जो है वो हर इंजीनियर को जन्म देता है या हर डॉक्टर को जन्म देता है क्योंकि मैं अगर ये कहूँ कि आज कोई आज के टाइम में शायद मैं कह सकती हूँ 20% लोग हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन 80% जो लोग हैं वो डॉक्टर बनाए जाते हैं राइट सो ये चीज बहुत क्लियर है लाइफ के अंदर कि 90% ऑफ आवर लाइफ डिसीजंस हैव बीन रूल्ड बाय द पेरेंट्स एंड मेनी अ टाइम्स ये होता है कि जब हम पेरेंट्स के प्रेशर के अंडर होते हैं या पेरेंट्स के एम्बिशंस को फुलफिल करने में असमर्थ होते हैं हम नहीं कर पाते हैं तो हम डाइवर्स स्टेप्स ले लेते हैं लाइफ के अंदर तो इस बुक के अंदर वो सारी चीजें बताई गई हैं कि आप कैसे उन डाइवर्स सिचुएशंस के अंदर लाइफ को एंजॉय कर सकते हो जैसे मैंने बोला कि आप क्या क्या ब्लंडर्स कर सकते हो व्हाइल यू आर स्टडिंग दिस बुक इज ऑल अबाउट टेलिंग कि ऑन अ सीरियस नोट कि आप जिंदगी में प्रेशर के होने के बावजूद आप कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो यू डोंट हैव टू बी अंडर प्रेशर 24/7 इन टाइम राइट जैसे हम बच्चे हैं जब हम स्टूडेंट्स हैं तो हम हमेशा हमारे अंदर ये जहन में रहता है कि ओहो आई हैव टू स्कोर 80% बिकॉज आई हैव टू इधर क्लियर दी एग्जामिनेशंस और आई हैव टू
मेक माय पेरेंट्स
पेरेंट्स प्राउड राइट हैप्पी क्योंकि पेरेंट्स तब तक हैप्पी नहीं होते जब तक उनको
90-80%
नहीं आते exactly. आप ये अभी इफ एक ध्यान रखें इस चीज़ का कि हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडियो जहाँ पे हम बैठे हैं स्टूडियो के आसपास में कॉलेज है राइट हमारी बिल्डिंग कॉलेज से सराउंडेड है तो मेरे ख्याल से इस वक्त जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सब बच्चों के अंदर ये चलता है कि आई हैव टू स्कोर 80% नोबडी सेज कि आई हैव टू जस्ट पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज है ना तो हर बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि मुझे 80% तो लाने ही लाने हैं मुझे
अगर काम आ गए तो पेरेंट्स का डर लगा रहता है
बिल्कुल तब आप बताना नहीं चाहते उनको हम लोग ये गलती करते थे
छुपाते भी हैं
बिल्कुल हम लोग मार्क्स शीट छुपाते भी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने तो बहुत बार छुपाई है पता
मैंने
नहीं
भी बहुत बार छुपाई है
बस हम लोग
मैथ्स की बहुत छुपाई
बहुत छुपाई है मैं मैथ्स का बहुत छुपाती थी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का बहुत छुपाती थी मतलब बाकी सबके पेपर मिल जाते थे बस यही तीन सब्जेक्ट के नहीं मिलते थे
मामा खुशी थे कि अभी तक मैथ्स का नहीं मिला
हो ही नहीं सकता एंड ये चीज हम लोग कितनी हद तक कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं. दिस इज नॉट वॉट वी कैन डू द एंटायर लाइफ. एंड हम लोग के पेरेंट्स जो हैं वो पीयर प्रेशर कह लो या जो मर्जी कह लो, वो हमेशा उनका भी अपना एक पीयर प्रेशर है. उनका भी, उनको लगता है कि सोसाइटी प्रेशर है. उनको भी लगता है कि जी मिस्टर बत्रा का बच्चा जो है वो तो इंजीनियर बन गया, अमेरिका में सेटल्ड है, तो मेरा बेटा क्यों नहीं. सो ये जो प्रेशर है, दिस एक्चुअली लीड्स टू वेरी डाइवर्स रिजल्ट्स जो कि नहीं होने चाहिए. तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो आई वॉज एक्चुअली इन द सेम सिचुएशन. मतलब टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, माई फादर वॉन्टेड, वी आर टू डॉटर्स, तो माई फादर एक्चुअली वॉन्टेड कि वन ऑफ द डॉटर शुड बी इधर कंप्यूटर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर. तो मी एंड माई सिस्टर बोथ टुक डाइवर्स स्टेप्स इन आर लाइफ. आई बिकेम अ फैशन डिजाइनर एंड शी इज डूइंग फैशन मीडिया मेकअप. सो आज भी मैं अपने पापा से ना डांट खाती हूँ कि मेरे बच्चे तो नालायक हैं.
ओके
तो ये वो सिचुएशन है जब पेरेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए. मैं तो हर माँ बाप को बोलूंगी कि ये किताब पढ़ें ताकि आप अपने बच्चों के दोस्त अच्छे बन सकते हो रादर देन बीइंग पेरेंट्स. सो दिस बुक इज ऑल अबाउट हाउ टू बिकम फ्रेंड्स एंड हेल्प देम आउट ऑफ दोस सिचुएशंस रादर देन बीइंग देयर पेरेंट्स एंड लीड देम टुवर्ड्स दैट सिचुएशन.
एंड अंकिता, व्हाट आई थिंक इज कि तुम कोई भी फील्ड चूज करो, उसमें अपना दी बेस्ट डालो.
बिल्कुल.
इधर यू आर इन मीडिया और यू आर इन फैशन इंडस्ट्री और यू आर इन एनी इंजीनियरिंग, इन फैक्ट अगर आप हो तो उसमें बेस्ट करो. जो भी आपका हॉबी है या आपका कोई भी पैशन है, अगर तुमने उसे बेस्ट कर लिया, देन यू आर दी बेस्ट.
एक्चुअली मैं आपको एक आंसर एक बात बताती हूँ. मेरे नाना जी एक बात कहते थे, अगर आप किसी टेबल की डस्टिंग कर रहे हो ना, तो इतनी सुंदर डस्टिंग करो, इतनी अच्छी डस्टिंग करो कि वो टेबल जो है ना वो अपनी बात बोले.
Exactly.
कि आज मुझे डस्ट किया गया है, आज मुझे साफ किया गया है. तो आप जिस भी चीज के अंदर अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी डालते हो, तो आप उसको बेमन से मत करो, आप उसको पूरे मन से करो. दिस इज ऑल अबाउट, दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट. आप कितने ब्लंडर्स आपको करने चाहिए, आप उन ब्लंडर्स को छुपाए ना आपने, क्योंकि हमारे यहाँ आंचल आप देखेंगे कि ये यूथ है, यूथ के अंदर ना समझी बहुत ज्यादा होती है. राइट, इवन आई एम सिटिंग टुडे, आई कैन जज माई सेल्फ कि मैंने भी कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं लाइफ के अंदर. एंड मैं भी आपको यही बोलूँगी कि हर बेवकूफ़ी के साथ में मैंने ये सोचा है कि मुझे इसको कवर कैसे करना होगा, हाउ डू आई लाई अबाउट इट. सो इंस्टेड ऑफ लाइंग, यू शुड बी मोर बोल्ड इनफ कि आप अपने पेरेंट्स को बता दो कि मैंने ये काम किया है. यस, फेस द प्रॉब्लम, फेस वट एवर ब्लंडर यू हैव डन. बिल्कुल. और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियरली बताओ कि मैंने ये गलत काम कर दिया, अब आगे आप संभालो. नहीं संभाल सकते तो मुझे गाइड करो. सो दिस बुक इज ऑल अबाउट दैट, दैट इवन इफ यू डू ब्लंडर्स, दिल खोल के ब्लंडर्स करने हैं, करे हैं, करो, लेकिन उन सिचुएशंस को, उन रिजल्ट्स से, उन चीजों से दूर मत भागो, फेस देम.
Now you tell me the gist of the novel, but how come it's named 5.1?
देखिए, गलतियाँ इस किताब के अंदर पांच हुई हैं.
Okay.
ठीक है, और पांचों गलतियों से चेतन भगत ने सोचा कि why not name it 5.1? क्योंकि हर इंसान से कहीं ना कहीं गलती होती है. तो शायद उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में जज किया होगा, एज ही इज एन IIT पास आउट, एंड उन्होंने भी अपने आप को सोचा होगा कि मैंने भी गलतियां करी हैं. तो उन्होंने जो पांच बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं शायद लाइफ के अंदर, वो उन्होंने फिक्शन के रूप में दिए हैं, या मैं कह सकती हूँ कि फिक्शन के रूप में उन्होंने रियलिटी एक्सप्रेस करी है. इट्स अ वाइस वर्सा सिचुएशन. तो 5.1 इज बेसिकली अबाउट दोज पर्टिकुलर 5 मिस्टेक्स जो उन्होंने करी, या उन्होंने देखी, या उन्होंने फील करी, जो उनके आसपास में उस ऑरा में हुई. तो उन्होंने यही सोचा कि व्हाई नॉट नेम इट 5.1.
ओके, एंड हाउ कम यू पिक्ड अप दिस बुक?
सी, एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई यूज्ड टू रीड सिडनी शेल्डन अ लॉट. ठीक है, एंड मर्डर मिस्ट्रीज वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स. एंड आफ्टर सिडनी शेल्डन मुझे कुछ मिला नहीं पढ़ने के लिए. सो आई जस्ट बाय चांस पिक्ड अप वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, एंड आफ्टर रीडिंग वन नाइट एट अ कॉल सेंटर आई हैड डेवलप्ड अ फ्लेयर फॉर हिम. एक फ्लेवर तैयार हो गया मेरे मन में कि ओके, नाउ दिस इज अनदर नॉवल, तो क्यों ना जज किया जाए कि वेदर ही, आई एक्चुअली पिक्ड अप द नॉवल ताकि मैं उसको जज कर सकूं कि ही डिड द जस्टिस विद द फर्स्ट नॉवल दैट ही हैड रिलीज्ड इन द मार्केट. क्या वो एक्चुअली उतना वर्दी है कि मैं उनको दोबारा पढ़ सकूं, या मैं उनको आगे भी पढ़ना पसंद करूं. तो ये इस बात में, मतलब ये बुक मैंने उठाई. एंड बाकी ये है कि मैं सबको बोलूंगी, प्लीज गो बाय दिस बुक एंड रीड इट, बिकॉज ये बुक इस वक्त हिंदी में भी अवेलेबल है एंड इंग्लिश में भी अवेलेबल है. एंड टू योर एस्टोनिशमेंट एंड टू माई एस्टोनिशमेंट, आई हर्ड समबडी से कि शायद ये साउथ की लैंग्वेज में भी पब्लिश हुई है. तो मतलब जिसको जो लैंग्वेज पसंद है वो उस लैंग्वेज में
पढ़ सकता है.
बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकता है.
ओके, नाउ अंकिता, सिंस यू हैव मेंशनड, आई वुड लाइक टू आस्क दैट ऑल बुक्स आर divided into two parts. Mm. One is that book of an hour and the another is book of the all time. And which will you grade it?
See, for Chetan Bhagat, I will always say book for an all time.
Okay.
ठीक है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप उस किताब को उठा के पढ़ने के बाद में उसको भूल सकते हो. जब आप ये बात बोलते हैं कि बुक फॉर एन आर एंड बुक फॉर एन ऑल टाइम, यू एक्चुअली ट्राई टू जज द मेंटल फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन. कि मतलब अच्छा, एक घंटे के लिए या कुछ देर के लिए पढ़ के साइड में रखने वाली किताब है, ठीक ठाक सी है, या आप उसको पढ़ने के बाद में उसके बाद में सोचोगे भी. तो अगर आप किसी को पढ़ने के बारे में सोचोगे, देन इट विल डेफिनेटली गिव यू एक प्लेटफॉर्म कि आप उससे रिलेट कर सकते हो.
कुछ बुक्स ऐसे होती हैं कि पढ़ने के बाद भी उसके अंदर से कुछ चीजें जो होती हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं.
आंचल, मुझे एक बात बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री तुमने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, कितनी याद है?
हार्डली.
तो इसीलिए ये कुछ ऐसी बुक है कि शायद आपको ये जितना आप लाइफ में आगे जाएंगे, आप कभी भी एक बार इसको पढ़ लिया उसके बाद में दोबारा शायद इसको उठा के फिर से पढ़ सकते हैं. तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ बुक. तो मैं हमेशा इसको ये बोलूंगी कि यस, इट इज बुक फॉर एन ऑल टाइम.
ऑल टाइम. एंड ओके अंकिता, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन 5.1?
ऑलराइट, वी हैव आंचल, इसमें 3 idiots, 3 idiots.
Okay.
Then we have one professor.
I would like to call him fourth idiot.
You can call him fourth idiot, but I think he is the first idiot.
First idiot. Okay.
Yes, he is one of the first idiots. And then we have uske aage 3 new idiots.
Mm-hmm.
We have a love story in this book. So obviously we have a girl, right? जिसके आसपास ये सारे कारनामे हो रहे हैं. एंड जो बहुत सारे कारनामों को बर्थ भी दे रही है. थ्रू हर देर आर लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द कैंपस. एंड देन वी हैव अ कपल ऑफ कैरेक्टर्स. वी हैव अनदर कैरेक्टर जो कि एक राइवल कैरेक्टर है, राइट? एंड मतलब दिस बुक इज ऑल अबाउट यू, मी, प्रोफेसर्स, डार्लिंग, एंड अनदर अराइवल फ्रेंड हु एक्चुअली थिंक्स ही इज द 90% स्कोरर, बट उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है जब कोई और 90% क्लास के अंदर लेकर आता है. So we have this book full of all the juicy things that we require to read. मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देती हूँ. जैसे कि हमारे पास में जो मेन ईडियट है, जो प्रोफेसर हैं, वो है प्रोफेसर शेरियन, राइट? देन जो आगे के नए 3 developing idiots हैं, वो है हैरी, राइट? ही इज बेटर कॉल्ड एज हैरी. देन वी हैव रायन. देन वी हैव आलोक. देन वी हैव द डार्लिंग इन द फिल्म, इन द बुक, Neha, who is the daughter of the professor.
Okay.
Then we have the rival, Venkat. So these are a couple of people who are there in the novel.
The story revolves around these
people. Around these, yes, these 5 people, and gives you quite a juicy trip. अच्छा है, बहुत पेपी है. कभी कभी आप इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी कभी आप
हंसते
भी हैं, और आप हंसते हंसते रोते भी हैं. So it will give you that kind of a journey.
Okay. So tell me first, who is the main character, who is the protagonist of this novel?
The story basically revolves around 3 people. ठीक है. And जब ये तीन लोग, जब तीन दोस्त एक जगह मिलते हैं.
And who are these 3 friends?
Harry, as I've told you, Ryan and Alok.
Okay.
These happen to be 3 good friends. And ये लोग मिलते ही IIT के campus के अंदर हैं. एंड जो इन तीनों में से इन्फ्लुएंशियल है, जिसकी बातें आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, वो है हैरी की बातें. बिकॉज ही हैपन्स टू बी अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, एंड उसकी बातों से आप रिलेट कर सकते हो बेसिकली. एंड हर कैरेक्टर के साथ में एक अपनी अपनी दुख भरी दास्तान है. लेकिन पता नहीं क्यों हैरी इन सब सिचुएशंस के अंदर ना कूल रहता है. He's very cool-minded. Very cool-minded. He has an answer for every problem. You go with a problem, he'll give you a solution. He's such kind of a person.
Okay.
Right? So, I will say ki Harry is one of the main characters. Yes.
Okay. And what kind of friendship they are sharing?
लोग कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, राइट? बट आई विल से ये तीन जो हैं, ये कांड करने में सबसे आगे हैं. एंड काफ़ी गहरी एंड अच्छी दोस्ती है इन लोगों की. और मतलब ये है कि अपने अपनी सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे की सिचुएशन को फील कर ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एंड मतलब आप बिल्कुल कह सकते हो कि ही इज़ अ पिलो बडी फॉर यू, राइट? सो दीज 3 शेयर सच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप.
ओके यू हैव आल्सो मेंशनड कि यहाँ पे एक विलेन है प्रोफेसर शेरियन करके
यस
एंड उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी कुछ
ओके पता है क्या होता है आंचल हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जब हम लोग स्टूडेंट्स भी थे तो जैसे हमारे प्रिंसिपल राउंड पर होते थे वो चश्मा नाक के ऊपर लगा के चलना और हाथ बिल्कुल पीठ के पीछे रख कर चलना
डिसिप्लिन
जब चलना तो मतलब ऐसे हो जाता था कि वहाँ पे कोई आत्मा भीनी भटकती वहाँ पर सन्नाटा हो जाता था तो ये ऐसा जो है वो ये प्रोफेसर कुछ ऐसे हैं एंड मतलब लाइफ में मजाक इनकी लाइफ में है ही नहीं ही इज अ वेरी सीरियस टाइप प्रोफेसर एंड इनके इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके डिसिप्लिन हैं एंड ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू रन अकॉर्डिंग टू इट बिकॉज ही सेज कि अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो आप क्यों डिसिप्लिन नहीं रह सकते आपको भी डिसिप्लिन होना जरूरी है तो इनका जो थॉट है वो हमेशा डिसिप्लिन और सिर्फ इस पे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये चीज जरूरी है तो जरूरी है अब अगर उनसे अगर मैं ये कह दूं कि 1+1=2 तो उनके लिए वो 1+1=2 है एंड अगर मैं ये पूछ लूं उनसे कि 1+1=2 क्यों है तो मतलब आप सोचो कि कितना स्टर्न मुझे एक आंसर मिल सकता है ही विल नेवर एक्सप्लेन विद अ स्माइलिंग फेस ही विल ऑलवेज एक्सप्लेन विद अ स्टर्न फेस
जैसे कि आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि तीन आड़ा काम बिगाड़ा
राइट
तो आई एम वेरी श्योर उन्हें कोई ना कोई काम जो है वो बिगाड़ा होगा इस प्रोफेसर के साथ भी
मैंने जैसे बोला कि एक इसमें डार्लिंग भी है
एग्जैक्टली
तो
डार्लिंग किसकी है सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी
देखो ऐसा है डार्लिंग वो बेचारे एक ही बंदे की है एंड बाकी दो को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे वो डार्लिंग होती है हैरी की और हैरी को भी पता तो होता नहीं है कि ये प्रोफेसर की बेटी है दैट्स अ ट्विस्ट बट जब उसे पता चलता है तो ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ लविंग हर एंड शी हैपेंस टू बी सच अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज एक्चुअली ऑपोजिट टू द प्रोफेसर वो अपने प्रोफेसर से बहुत अलग है वो अपने फादर से बहुत अलग है एंड वो अपने फादर के उसूलों पे खरा उतरना चाहती है जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं कि बच्चा IIT में जाए ये करे वो करे तो उसका भी कुछ ऐसा ही नेचर है कि अपने फादर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जैसे उसके फादर चाहते हैं कि वो भी एक डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तो वो अपने फादर के सपनों को पूरा कर रही है विदाउट एनी इंटरेस्ट इन देम
Without even complaining.
तो ये चीज़ है जो वो कर रही है एंड बाकी ये है कि इसके अंदर मैंने आपको एक और नाम बताया था वेंकट मुझे पता था आप उस पे आएंगी तो वेंकट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत जेलसी होती है अगर कोई उसको अप्रिशिएट ना करे और किसी और को अप्रिशिएट करे तो बिकॉज ही इज दी पर्टिकुलरली इन्वर्टेड कॉमास में दी हाई स्कोरर टॉप स्कोरर तो जैसे आज ये होता है आज आप भी मानेंगे ये बात कि अगर क्लास के अंदर दो बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हैं और फर्स्ट प्लेस पे हैं तो दोनों को जेलसी होती है
कंपटीशन हमेशा बना रहता है
कि उसके क्यों मेरे क्यों नहीं
पॉइंट्स में कंपटीशन होता है
बिल्कुल तो इसीलिए इनका भी ये हिसाब है एंड वेंकट को जेलसी है कि व्हाई इज हैरी पॉपुलर अमंगस्ट द स्टूडेंट्स वेयर एज ही शुड बी द टॉक द टॉपिक ऑफ द टॉक एंड व्हाई इज ही नॉट द टॉपिक ऑफ द टॉक एंड हैरी इज ठीक है तो वो ये बताना चाहता है कि आई एम द टॉप स्कोरर टॉक अबाउट मी राइट आपने आर्चीज पढ़ी है तो उसमें हमेशा एक डिल्टन करके कैरेक्टर होता है तो डिल्टन एक साइंस फ्रीक एक गैजेट फ्रीक और एक बहुत स्टूडियस टाइप ऑफ बच्चा है तो वेंकट इज ऑलमोस्ट दैट ही इज अ वेरी टेक सावी वेरी साइंस फ्रीक वेरी मैथोडोलॉजिकल एंड हमेशा ना मतलब ये प्रोफेसर की निगाहों में ना अच्छा प्रूव होना चाहता है तो इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर दैट एंड हैरी कुछ भी नहीं करता ही डजंट बॉर्डर एट ऑल वो कुछ भी नहीं करता उसके बावजूद वो पूरे कॉलेज के अंदर ना
फेमस है
अगर उसने क्वेश्चन कर लिया तो पूरा कॉलेज पलट के देखेगा उसको अगर वेंकट ने कुछ पूछ लिया तो नोबडी बॉदर्स अबाउट हिम तो ये उसके अंदर एक जेलसी की भावना है एंड ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू फाइट बैक अगेंस्ट हैरी उसको हमेशा लगता है कि
yes,
हाँ वो अटेंशन सीकर है तो उसको ये लगता है कि सब उसके बारे में बात करें और इसीलिए वो बहुत जेलसी प्रिटेंड भी करता है हैरी के साथ में
वेंकट आपने बताया कि टॉपर है अपने यूनिवर्सिटी का अपने कॉलेज का तो व्हाट अबाउट हैरी रियान अलोक
देखो ये बेचारे तीन ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत पढ़ते हैं बहुत मेहनत भी करते हैं मतलब हैरी को छोड़ के बाकी दो बहुत मेहनत करते हैं बहुत पढ़ते हैं उसके बाद में भी नंबर नहीं आते
ओके
तो आलोक तो बेचारा इसी में रह जाता है. आलोक की एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आलोक इस बुक के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके घर में ना चाहे एक वक्त खाना मिले ना मिले, लेकिन आलोक की वो कैसे 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 करके फीस इकट्ठा करते हैं. एंड दे वॉन्ट हिम टू बी अ इंजीनियर सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ द होल फैमिली इन द लेटर स्टेज. उसके फादर जो हैं वो बेड रिडन है एंड उसकी मदर जो हैं वो शायद एक स्कूल में टीचर हैं या कुछ हैं जो बहुत कम तनख्वाह मिल को जिनको मिलती है. उसकी एक बहन है जिसकी शादी होनी है.
एक मूवी,
हाँ बिल्कुल 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 वैसी टिपिकल हिंदी मूवी है. पुअर फैमिली जिसकी सारी जिम्मेदारियां अपने लड़के के कंधों पे हैं एंड वो लड़का
बनने का
एक और बर्डन उसके कंधों पे है. तो उसको हमेशा ये लगा रहता है कि मतलब मैं कैसे करके भी अपने माँ बाप के इन सपनों को पूरा करूँ, अपनी बहन की शादी करूँ. और उसको हमेशा ये है कि उसने ना एक मारुति कार जो है वो अपनी बहन को गिफ्ट करनी है शादी में. तो उसकी फाइट ना उस मारुति कार तक के लिए है एज एन डाउरी. यस तो उसको ये लगता है कि उस अब उसकी बहन की शादी नहीं हो पाएगी अगर वो मारुति कार मैनेज नहीं कर पाएगा. तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है. रियान इज़ अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो बहुत इंटरेस्टेड भी है, नहीं भी है पढ़ाई में. क्योंकि अगर मैं इसके साथ में जस्टिस करूँ तो इसका बेसिक इंटरेस्ट इंजीनियरिंग नहीं है. ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर मोर इन लाइफ बट क्योंकि उसके पेरेंट्स का भी दबाव है एज आई सेड कि आपने नहीं इंजीनियरिंग बनना है जो हाँ यूजुअली आज भी होता है. तो वो उस प्रेशर के अंदर है. हैरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बेसिकली पेरेंट्स ने तो कहा है एंड उसका खुद का भी मैं कह सकती हूँ 25% इंटरेस्ट है, लेकिन वो सिर्फ आईआईटी में आया है क्योंकि सिर्फ एक आईआईटी का नाम चाहिए कि ये आईआईटी से पास आउट है. उसके लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, जबकि आलोक के लिए बहुत मायने रखती. राइट सो ये ऐसे तीन कैरेक्टर्स हैं जिनकी लाइफ कुछ ऐसी है.
नाउ सिंस आई हैव हर्ड दैट दिस नॉवल इज अबाउट व्हाट नॉट टू डू इन आईआईटी एंड सिंस यू हैव मेंशनड इन द बिगनिंग ऑफ द इंटरव्यू दैट व्हाट टू डू इन द आईआईटी, सो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीस क्वेश्चंस. आई वुड लाइक यू टू क्लेरिफाई.
ओके आंचल, ऐसा है कि सब जानते हैं आईआईटी के अंदर जाओगे तो पढ़ोगे.
एग्जैक्टली
राइट. और ये किताब है ऐसी कि आप आईआईटी के अंदर जाने के बाद में वो तो बट ऑफिस है कि आपने पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा हर कोई कहता है कि आप मिसबिहेव मत करो, हर कोई कहता है आप क्लासेस बंक मत करो, हर कोई कहता है आप दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ, हर कोई कहता है कि अपने पेपर्स मत मिस करो.
True.
तो ये मत 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 जो है कुछ ज्यादा ही है.
Not to do things.
हाँ, जो नॉट टू डू है उनको टू डू करो.
ओके
ठीक है, वो आपकी टू डू लिस्ट में होने चाहिए. क्लासेस बंक करो, ठीक है, डेट पे जाओ, राइट, लेक्चर्स मिस करो, हर चीज लाइफ के अंदर जो आपको एंजॉयमेंट देती करो, लेकिन उसके साथ में सीरियस भी रहो. इट इज़ नॉट ऑल एंड ऑल अबाउट कि आप पढ़ाई मत करो. इट इज़ अबाउट पढ़ाई करो, बट विद पढ़ाई यू शुड नॉट मिस दोज लिटिल थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस. राइट, सो जो ब्लंडर्स होते हैं, ये ब्लंडर्स होते क्यों हैं? क्योंकि आप इन सब चीज़ों को मिस कर देते हो. आपको लगता है कि आपने ब्लंडर किया है क्योंकि आपको गिल्टी फीलिंग आती है कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं ये काम कर रहा हूँ. वो आपको गिल्टी फीलिंग है, लेकिन आप ये सोचें कि पढ़ाई का भी एक समय होता है, इन्जॉयमेंट का, हाँ, मौज मस्ती का भी एक समय है. तो दिस बुक इज ऑल अबाउट कि आप वो अगर मौज मस्ती कर रहे हो तो डोंट बी गिल्टी अबाउट इट.
मैं दोनों चीजों को बैलेंस रखना चाहिए, सैक्रिफाइस नहीं करना पढ़ाई के साथ अपने एन्जॉयमेंट को और एन्जॉयमेंट के साथ अपनी स्टडीज को.
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको टोटल दोनों तरफ में आपको जस्टिस करना है.
इस नॉवल 5.1 में एक और पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों प्लान करते हैं पेपर चोरी करने का. नाउ दिस इज टू डू थिंग्स एंड नॉट टू डू थिंग्स वाला बात आ गया. एंड दे आर कॉट रेड हैंडेड.
यस,
उस सिचुएशन के बारे में
मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ऑब्वियसली ये नॉट टू डू है कि आप पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स चोरी करें, लेकिन वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे ये दो दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए क्वेश्चन पेपर्स चुराने चले जाते हैं. एक्चुअली क्या होता है कि आलोक, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है कि उसको अपनी बहन की शादी करनी है, फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, फादर बेड रिडन है, माँ कैसे तैसे करके फीस जमा करती है. तो लड़का मतलब जब उसका पेपर होने वाला है उससे पहले उसके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ टाइप्स. राइट, तो ये दो दोस्त हैं जो बेसिकली प्लॉट होता है हैरी का कि हम अपने दोस्त को हेल्प करेंगे, क्योंकि हैरी तो ये कहता है कि मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस एक नाम चाहिए, इवन इफ आई पास एज अ थर्ड डिवीजन तो इट डजंट मेक मैटर टू मी, राइट। और रायन के लिए उसके फादर एक्सपेक्ट करते कि वो फर्स्ट डिवीजन पास हो, क्योंकि रायन इंटेलिजेंट है तो उसके लिए सेकंड डिवीजन तक वो लायबल है कि वो सेकंड डिवीजन तक ले आएगा। अगर वो पढ़ेगा तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो वो सेकंड डिवीजन तक ला सकता है। लेकिन आलोक, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, तो ये हैरी और रायन जो हैं ये दोनों प्लॉट करते हैं कि हम जाते हैं प्रोफेसर के पेपर्स चुरा के लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी ये नॉट टू डू लिस्ट में है, बट सिचुएशन ये थी कि अपने एक दोस्त को हेल्प करने के लिए उन्होंने ये काम किया। मैं सबको ये नहीं कहती कि आप प्लीज़ ये करो
जी,
बट अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा भी मत करो कि अपने दोस्त के लिए कर रहे हो। बेटर ये होगा कि आप उस सिचुएशन में ज़्यादा देन कि आप उस सिचुएशन में पेपर चुराओ, आप अपने दोस्त को उसको हेल्प करो, उसको शुरू से ही हेल्प करो
जी,
ताकि आपको ये नौबत ही ना आए कि आपको क्वेश्चन पेपर चुराने की नौबत आए, ताकि आप उस बंदे को कूली कामली आराम से वहाँ तक ले जाओ जहाँ उसे अपनी परफॉर्मेंस देनी है।
ओके, एंड जैसे कि आपने कहा था कि हैरी बहुत स्मार्ट है और हर सिचुएशन से वो बाहर निकल जाता है, जब वो पकड़े गए देन हाउ कम ही केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन।
ओके, क्या होता है कि जब ये पकड़े जाते हैं तो इन तीनों के घर में चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं
जी।
खैर, चिट्ठी भेजने की नौबत से पहले क्या होता है कि आलोक को बुलाया जाता है और प्रोफेसर उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप हैरी के खिलाफ और रायन के खिलाफ नहीं आप बोलेंगे तो मैं आपको रेस्टिकेट कर दूंगा, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। अब क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसको अपनी फैमिली देखनी है, वो कैसे रिटेलिएट करे इस प्रेशर के अंदर, उसके रिफ्लेक्सेस क्या होने चाहिए, या तो वो अपने दोस्तों के साथ में डिच करे उनको कि उनके खिलाफ वो कंप्लेंट करे, या फिर वो ना डिच करे और खुद सस्पेंड हो जाए, तो उसके लिए बहुत कंफ्यूज सिचुएशन हो जाती है कि वो करे तो करे क्या। अपने दोस्तों को वो धोखा देना नहीं चाहता क्योंकि ये ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने थिक एंड थिन में उसका साथ दिया है, एंड